एकत्र ज्ञान गोष्ठी आज के जरूरी विचारों का सार अब अपनी भाषा में। यह ऑडियो सारांश एकत्र एआई की मदद से तैयार किया गया है। ज्ञान गोष्ठी में आपका स्वागत है। नमस्कार। आज हम एक ऐसी किताब की दुनिया में गोता लगाने वाले हैं जो सोचने पर मजबूर करती है, धारणाओं को चुनौती देती है और सच कहूं तो शायद दुनिया को देखने का आपका नजरिया भी बदल दे।
हाँ।
ये किताब है स्टीवन डी लेविट और स्टीफन जे डबनर की लिखी फ्रीकनॉमिक्स, हर चीज के छिपे पहलू की खोज।
बिल्कुल। और देखिए, ये सिर्फ वही इकोनॉमिक्स की मतलब अर्थशास्त्र की भारी भरकम किताब नहीं है जैसे शायद नाम सुनकर लगे।
हाँ, नाम तो थोड़ा वैसा ही है।
असल में ये इस बारे में है कि दुनिया चलती कैसे है।
हाँ।
पर्दे के पीछे क्या हो रहा है। और आज के जमाने में जहाँ देखो जानकारी ही जानकारी है हर तरफ से।
हाँ, इन्फॉर्मेशन ओवरलोड जिसे कहते हैं।
बिल्कुल। तो ऐसे में ये समझना कि भाई चीजें हो क्यों रही हैं, उनका असली कारण क्या है, सतही बातों से हटकर देखना, ये बहुत जरूरी हो गया। और फ्रीकोनॉमिक्स हमें वही नजरिया देती है थोड़ा हटके सोचने का।
तो चलिए पहले ये जानते हैं कि ये कमाल के आइडियाज आए कहाँ से, मतलब इन लेखकों के बारे में थोड़ा जानते हैं।
जरूर। तो पहले हैं स्टीवन डी लेविट। ये शिकागो यूनिवर्सिटी में इकोनॉमिक्स के प्रोफेसर हैं, लेकिन ये वो टिपिकल अर्थशास्त्री नहीं है जो बस जीडीपी और टैक्स की बातें करें।
हाँ, मैंने भी सुना है इनको लोग रोग इकोनॉमिस्ट यानी दुष्ट अर्थशास्त्री भी कहते हैं।
हाँ बिल्कुल। दुष्ट शायद इसलिए क्योंकि ये इकोनॉमिक्स के फंडे मतलब सिद्धांत ऐसी ऐसी जगहों पर लगाते जहाँ कोई आमतौर पर सोचता भी नहीं।
जैसे कि
जैसे अपराध की दुनिया में, स्कूलों में क्या चल रहा है, यहाँ तक कि सुमो पहलवान क्या करते, मतलब ये डेटा के जासूस हैं एक तरह से, आंकड़ों में छिपे पैटर्न और सच को खोज निकालते हैं।
अरे वाह, और इनका काम वाकई महत्वपूर्ण माना जाता है।
बहुत ज्यादा। इनको जॉन बेट्स क्लार्क मेडल मिला है जो 40 साल से कम उम्र के सबसे प्रभावशाली अमेरिकी अर्थशास्त्री को दिया जाता है, तो ये कोई छोटी बात नहीं है।
बिल्कुल। और दूसरे लेखक स्टीफन डबनर।
हाँ, स्टीफन जे डबनर ये एक शानदार पत्रकार और लेखक हैं, न्यूयॉर्क टाइम्स मैगजीन के लिए लिखते थे पहले। इनकी खूबी ये है कि ये लेविट के जो मुश्किल डेटा से भरे रिसर्च होते ना।
हाँ, जो शायद हमें सीधे सीधे समझ ना आए।
एग्जैक्टली। डबनर उन्हें ऐसी दिलचस्प कहानियों में बदल देते हैं कि पढ़ने में मजा आ जाता है। वो मुश्किल आइडियाज को हम जैसे आम पढ़ने वालों के लिए एकदम आसान और दिलचस्प बना देते हैं।
तो मतलब एक का दिमाग है जो अनोखे सवाल ढूंढता है और डेटा में जवाब खोजता है,
और दूसरे की कलम है जो उन जवाबों को कहानी बना देती है।
सही बात है, इन दोनों का कॉम्बिनेशन ही जबरदस्त है। शायद इसीलिए फ्रीकोनॉमिक्स इतनी पॉपुलर हुई, मुश्किल चीजों को आसान और मजेदार बना दिया इन्होंने।
बिल्कुल। तो अब आते हैं किताब पर।
हाँ,
आखिर ये है किस बारे में।
हाँ,
अगर एक लाइन में कहना हो तो ये कि चीजें वैसी नहीं होती जैसी ऊपर से दिखती हैं।
मतलब हर चीज का एक छिपा हुआ पहलू होता है।
हाँ, ये किताब हमें आज की दुनिया के मतलब मॉडर्न वर्ल्ड के छिपे हुए नियमों और कारणों की एक तरह की यात्रा पर ले जाती है।
और इसका जो मूल मंत्र है वो है फ्रीकोनॉमिक्स वाली सोच। ये क्या है असल में?
देखिए, ये दुनिया को देखने का एक नजरिया है, एक तरीका जो सबूत और डेटा के पीछे भागता है बिना रुके, जो सुनी सुनाई बातों पर या जिसे आम राय कहते हैं उस पर आंख बंद करके यकीन नहीं करता।
अच्छा।
और सबसे ज्यादा ध्यान देता है एक चीज पर, इंसेंटिव्स मतलब प्रोत्साहन।
हाँ।
किताब कहती है कि अगर आप ये समझ जाएं कि लोगों को किस चीज से प्रेरणा मिलती है या किस चीज का लालच है या डर है,
तो आप उनके व्यवहार को काफी हद तक समझ सकते हैं।
हाँ बिल्कुल। हाँ। आप उनके बर्ताव को डिकोड कर सकते हैं एक तरह से।
और ये कोई उबाऊ टेक्स्ट बुक नहीं है।
हाँ। नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं, ये तो रोजमर्रा की पहेलियां सुलझाने जैसा है। किताब कुछ बेसिक आइडियाज से शुरू होती है, जैसे इंसेंटिव्स ही हमारे ज्यादातर कामों की जड़ होते हैं।
ठीक है।
दूसरा, जिसे हम पारंपरिक ज्ञान या कॉमन विजडम मानते हैं वो अक्सर गलत निकलता है।
अच्छा।
हाँ। और तीसरा जो बहुत जरूरी है कि दो चीजों का एक साथ होना मतलब कोरिलेशन, जरूरी नहीं कि उनमें से एक दूसरे का कारण हो मतलब कॉजेशन।
हाँ, ये कोरिलेशन और कॉजेशन वाला कन्फ्यूजन तो बहुत होता है।
बिल्कुल। फिर इन्हीं आइडियाज का इस्तेमाल करके लेखक कुछ बहुत ही हैरान करने वाले सवाल उठाते हैं और उनके जवाब डेटा में ढूंढते हैं।
जैसे?
कुछ उदाहरण देंगे।
जैसे कि स्कूल टीचर और सुमो पहलवान में क्या कॉमन है, या फिर एक रियल एस्टेट एजेंट और कू क्लक्स क्लैन यानी के इनमें क्या समानता हो सकती है। सुनने में अजीब लगता है ना?
हाँ बिल्कुल, ये तो कहीं से भी जुड़े हुए नहीं लगते। और सवाल यही नहीं रोकते, ड्रग डीलर अपनी माँ के साथ क्यों रहते हैं, अमेरिका में 90 के दशक में अचानक क्राइम इतना कम क्यों हो गया, और बच्चों की परवरिश करते हुए कौन सी बातें हैं जो सच में मायने रखती हैं?
इतने अलग अलग टॉपिक।
हाँ हाँ, जानबूझकर, ताकि ये दिखाया जा सके कि ये जो फ्री इकोनॉमिक्स वाली सोच है ना, ये कहीं भी फिट हो सकती है। ये हमें दुनिया को देखने का एक नया चश्मा पहना देती है।
चलिए तो अब थोड़ा और अंदर चलते हैं, कुछ चैप्टर्स की बात करते हैं। पहला अध्याय जिसका सवाल ही बड़ा अजीब है, स्कूल टीचर और सुमो पहलवानों में क्या समानता है?
हाँ, और जवाब उससे भी दिलचस्प है। दोनों ही कुछ खास हालात में चीटिंग कर सकते हैं, धोखा दे सकते हैं, और वजह इंसेंटिव्स।
अच्छा, कैसे?
शिकागो के स्कूलों में क्या हुआ जब टीचरों की नौकरी और स्कूलों की फंडिंग को बच्चों के टेस्ट स्कोर से जोड़ दिया गया, तो कुछ टीचरों के लिए बच्चों के जवाब बदलने का एक प्रोत्साहन या इंसेंटिव पैदा हो गया।
मतलब ताकि उनके स्कोर अच्छे दिखें।
हाँ, लिमिप ने डेटा में ऐसे पैटर्न पकड़े जहां बच्चों ने मुश्किल सवाल तो सही कर दिए पर आसान वाले गलत। ये साफ संकेत था कि कुछ गड़बड़ है।
और सुमो पहलवान, वहां क्या हुआ?
वहां भी कुछ ऐसा ही। सुमो कुश्ती में रैंकिंग ही सब कुछ है, पैसा, इज्जत सब उसी से जुड़ा है। अब सोचिए, टूर्नामेंट का आखिरी मैच है, एक पहलवान ऐसी सिचुएशन में है कि अगर वो जीता तो उसकी रैंकिंग बच जाएगी या सुधर जाएगी। मतलब जीतना बहुत जरूरी है।
ठीक।
और उसका जो प्रतिद्वंद्वी है उसे हारने जीतने से ज्यादा फर्क नहीं पड़ने वाला। तो ऐसे में क्या होगा?
क्या लगता है?
डेटा ने दिखाया कि ऐसी सिचुएशन में जिस पहलवान के लिए जीतना जरूरी था वो उम्मीद से कहीं ज्यादा बार जीत रहा था, करीब 80% बार, जो स्टैटिस्टिकली मतलब सांख्यिकीय रूप से लगभग नामुमकिन है।
तो मतलब मैच फिक्सिंग या कोई अंदरूनी समझौता?
बिल्कुल, ये उसी तरफ इशारा कर रहा, एक तरह का लेन देन। तो सबक ये है कि जब दांव पे ज्यादा कुछ लगा हो, चाहे वो स्कूल का क्लासरूम हो या सुमो का अखाड़ा, इंसान धोखा देने के रास्ते निकाल सकता है। ये सही गलत से ज्यादा इंसेंटिव का खेल है।
दिलचस्प। अब अगला अध्याय, कु क्लक्स क्लैन KKK और रियल एस्टेट एजेंट में क्या समानता है? ये तो और भी ज्यादा चौंकाने वाला सवाल है।
हाँ, यहां मुद्दा है इन्फॉर्मेशन एसिमेट्री का, मतलब जानकारी का डिसइक्विलिब्रियम। जिसके पास ज्यादा जानकारी है उसके पास ज्यादा ताकत होती है।
अच्छा, KKK के मामले में कैसे?
देखिए, KKK जो एक नफरती संगठन था, उसकी ताकत काफी हद तक उसके रहस्यों, उसकी गोपनीयता में छिपी थी। वो क्या करते हैं, उनके कोड वर्ड क्या हैं, उनकी रस्में क्या हैं, ये सब गुप्त था।
हाँ।
फिर एक लेखक थे स्टेटसन कैनेडी, वो किसी तरह उनके अंदर घुस गए और सारे राज बाहर ले आए। उन्होंने वो सीक्रेट्स एक पॉपुलर रेडियो शो सुपरमैन पर लीक कर दिए।
अरे, फिर क्या हुआ?
फिर क्या, उनका सारा रहस्य खत्म हो गया, लोग उनका मजाक उड़ाने लगे और उनकी ताकत एकदम कम हो गई। जानकारी बाहर आई, ताकत गई।
और रियल एस्टेट एजेंट, उनका इससे क्या लेना देना?
उनके पास भी तो हमसे ज्यादा जानकारी होती है ना, जब हम घर खरीदने या बेचने जाते हैं, उन्हें घर की असली मार्केट वैल्यू पता होती है, बाजार का मूड पता होता है, बेचने वाले की क्या जरूरत है, ये सब वो ज्यादा जानते हैं।
हाँ, ये तो है।
और उनका इंसेंटिव क्या होता है, जल्दी डील करवाना ताकि उन्हें अपना कमीशन मिले, भले ही कीमत थोड़ी कम क्यों ना हो। जबकि घर का मालिक क्या चाहता है, सबसे ऊंची कीमत।
तो यहाँ हितों का टकराव है।
बिल्कुल। लेखकों ने डेटा देखा तो पाया कि जब रियल एस्टेट एजेंट्स अपना खुद का घर बेचते हैं तो वो उसे मार्केट में ज्यादा दिन तक रखते हैं और ज्यादा कीमत पर बेचते हैं।
अच्छा, मतलब साफ है कि वो अपनी जानकारी का फायदा उठाते हैं।
एग्जैक्टली। तो सबक क्या है, जानकारी ही शक्ति है, चाहे वो KKK जैसा संगठन हो या आपका प्रॉपर्टी डीलर। जिसके पास ज्यादा इन्फॉर्मेशन उसका पल्ला भारी।
ये तो सोचने वाली बात है। अब आते हैं उस सवाल पर, ड्रग डीलर अपनी माँ के साथ क्यों रहते हैं? हम फिल्मों में तो देखते हैं कि वो बड़े अमीर होते हैं, बड़ी गाड़ियों में घूमते हैं।
हाँ, यही तो वो मिथक है जिसे ये किताब तोड़ती है। हुआ ये कि एक समाजशास्त्री थे सुधीर वेंकटेश, उन्होंने बड़ी हिम्मत दिखाकर शिकागो के एक ड्रग गैंग के अंदरूनी फाइनेंशियल रिकॉर्ड्स हासिल कर लिए।
अरे वाह, ये कैसे किया?
वो एक लंबी कहानी है, पर उन्होंने कर लिया। और उन रिकॉर्ड से पता चला कि गैंग का स्ट्रक्चर किसी बड़ी कंपनी जैसा था। टॉप पर कुछ बॉस लोग, उनके नीचे कुछ मैनेजर्स और फिर नीचे सैकड़ों फुट सोल्जर जो गली नुक्कड़ पर ड्रग्स बेचते थे।
अच्छा, तो इन फुट सोल्जर्स की कमाई कैसी थी?
यही तो चौंकाने वाली बात है। उनकी औसत कमाई निकली सिर्फ $3.30 प्रति घंटा, यानी मिनिमम वेज से भी कम।
क्या, और खतरा?
वो तो बहुत ज्यादा होगा।
बहुत ज्यादा, 4 साल के अंदर उनके मारे जाने की संभावना 1 में 4 थी।
हे भगवान।
तो फिर कोई ये काम क्यों करेगा, ये तो बिल्कुल समझ से बाहर है।
वजह थी जिससे लेखक कहते हैं टूर्नामेंट मॉडल, जैसे लॉटरी नहीं होती
जी,
लाखों लोग टिकट खरीदते हैं ये जानते हुए कि जैकपॉट किसी एक को ही मिलेगा।
हाँ,
वैसे गैंग में ऊपर चढ़ने का, बड़ा आदमी बनने का चांस बहुत कम था, लेकिन अगर कोई पहुंच गया तो फिर पैसा और पावर बहुत ज्यादा थी।
तो ये नीचे वाले लोग, वो फुट सोल्जर, भविष्य की उस छोटी सी धुंधली सी उम्मीद के लिए
आज इतना कम पैसा और इतना ज्यादा जोखिम उठाने को तैयार थे।
हाँ,
वो आज की कुर्बानी दे रहे थे कल के बड़े इनाम के सपने के लिए। ये उम्मीद चाहे जितनी भी कमजोर क्यों ना हो, एक बहुत शक्तिशाली इंसेंटिव है।
ये तो बिल्कुल अलग ही तस्वीर है ड्रग्स की दुनिया की। अब आते हैं उस अध्याय पर जो शायद सबसे ज्यादा चर्चा में रहा और विवादों में भी। सारे अपराधी कहाँ चले गए? 90 के दशक में अमेरिका में क्राइम रेट में इतनी भारी गिरावट क्यों आई?
हाँ, ये बहुत बड़ा सवाल था उस समय। लेखक पहले उन वजूहों को देखते हैं जो आमतौर पर गिनाई जाती हैं, जैसे अर्थव्यवस्था अच्छी हो गई थी, पुलिसिंग के तरीके बदल गए थे, ज्यादा लोगों को जेल भेजा जा रहा था, वगैरह वगैरह।
हाँ, ये सब तो सुनने में आता है।
लेखक मानते हैं कि हाँ, इन सब का थोड़ा बहुत असर तो पड़ा होगा, लेकिन इतना नहीं कि इतनी बड़ी, इतनी नाटकीय गिरावट की पूरी तरह व्याख्या कर सकें। डेटा उतना सपोर्ट नहीं करता इन थ्योरीज को।
तो फिर उनके हिसाब से असली या सबसे बड़ी वजह क्या थी?
उनका जो तर्क है, जो पूरी तरह डेटा पर आधारित है और जिसने काफी हलचल मचाई थी, वो ये था कि इसका सबसे बड़ा और सबसे अप्रत्याशित कारण था 1973 का सुप्रीम कोर्ट का एक फैसला, रो वर्सेस वेड।
रो वर्सेस वेड, ये तो गर्भपात को कानूनी मान्यता देने वाला फैसला था।
जी हाँ,
लेकिन गर्भपात का अपराध से क्या कनेक्शन, ये तो समझ नहीं आया।
देखिए, लेखकों का तर्क थोड़ा जटिल है, पर ध्यान से सुनिए। उनका कहना है कि जो बच्चे अनचाहे माहौल में पैदा होते हैं, मतलब जहाँ गरीबी हो, परिवार टूटा हुआ हो या माता पिता देखभाल करने में सक्षम ना हो, ऐसे बच्चों के बड़े होकर अपराध की दुनिया में जाने का खतरा ज्यादा होता है। अब जब 1973 में गर्भपात कानूनी हो गया, तो खासकर उन महिलाओं को जो शायद बहुत युवा थीं या गरीब थीं या अकेली थीं और अच्छी परवरिश देने की स्थिति में नहीं थीं, एक विकल्प मिल गया। इसका नतीजा ये हुआ कि 70 के दशक और उसके बाद ऐसे बच्चों की पैदाइश कम हो गई जो शायद बड़े होकर मुश्किल जिंदगी जीते और अपराध की तरफ मुड़ते।
अच्छा, और फिर?
फिर जब ये पीढ़ी, मतलब जो बच्चे 70 के दशक के मध्य के बाद पैदा नहीं हुए, जब वो 90 के दशक में अपनी उस उम्र में पहुंचे जब अपराध करने की संभावना सबसे ज्यादा होती है, यानी लेट टीन्स और अर्ली ट्वेंटीज,
हाँ समझ रही हूँ,
तो उनकी अनुपस्थिति ने, मतलब उनकी कम संख्या ने, संभावित अपराधियों का पूल ही छोटा कर दिया और इससे अपराध दर में भारी गिरावट आई।
ये तो बहुत ही अलग और कहना पड़ेगा विवादास्पद सोच है।
हाँ है, और ये याद रखना जरूरी है कि ये लेखकों का डेटा का विश्लेषण है। वो गर्भपात सही है या गलत इस पर बास नहीं कर रहे, वो सिर्फ डेटा के आधार पर एक अप्रत्याशित लिंक दिखा रहे हैं। ये भी दिखाता है कि समाज में जो बड़े बदलाव आते हैं उनके कारण कई बार कितने अप्रत्यक्ष और कितने दूरगामी हो सकते हैं।
बिल्कुल, सोचने वाली बात है।
चलिए अब थोड़ा हल्का टॉपिक लेते हैं, पेरेंटिंग। अध्याय 5 पूछता है, एक परफेक्ट माता पिता क्या होता है? आजकल पेरेंट्स पे कितना प्रेशर रहता है इस बात का।
हाँ, बहुत ज्यादा। और यहाँ भी डेटा हमें चौंकाता है। लेखकों ने हजारों बच्चों के लॉन्गिट्यूडनल स्टडी डेटा को खंगाला, मतलब बच्चों को सालों तक फॉलो किया गया।
और क्या पाया? उन्होंने पाया कि जिन चीजों की पेरेंट्स बहुत चिंता करते हैं, जिन पर बहुत फोकस करते हैं, जैसे बच्चे को रोज कहानी पढ़कर सुनाना या उसे अच्छे प्री स्कूल हेड स्टार्ट भेजना या उसे बार बार म्यूजियम ले जाना या माँ का नौकरी करना बनाम घर पर रहना।
हाँ, ये सब तो बहुत कॉमन चिंताएं हैं।
डेटा के हिसाब से इन चीजों का बच्चे के टेस्ट स्कोर पर, मतलब स्कूल के प्रदर्शन पर, औसतन बहुत कम या लगभग कोई असर नहीं पड़ता।
क्या, ये कैसे हो सकता है? हम तो यही सब करने में लगे रहते हैं।
हाँ, तो फिर सवाल उठता है कि किस चीज का असर पड़ता है।
बिल्कुल बताइए।
असर उन चीजों का ज्यादा मजबूती से दिखा जो ये बताती हैं कि माता पिता खुद क्या हैं, बजाय इसके कि वो क्या करते हैं।
मतलब
जैसे माता पिता कितने पढ़े लिखे हैं, उनकी सामाजिक आर्थिक स्थिति कैसी है, घर में कितनी किताबें हैं, जो शायद दिखाता है कि परिवार में ज्ञान और जिज्ञासा का माहौल कैसा है। और एक और दिलचस्प बात, बच्चे की माँ की उम्र जब उसका पहला बच्चा हुआ वो 30 या उससे ज्यादा थी या नहीं।
अच्छा, तो ये चीजें ज्यादा मायने रखती हैं।
डेटा तो यही इशारा करता है। इसका मतलब शायद ये हुआ कि पेरेंट्स को बच्चों के लिए हर छोटी छोटी एक्टिविटी प्लान करने से ज्यादा इस बात पर ध्यान देना चाहिए कि वो खुद कैसे हैं। क्या वो खुद पढ़ लिख रहे हैं, अपना करियर बना रहे हैं, स्वस्थ और खुश हैं? क्योंकि आप जैसे व्यक्ति हैं उसका असर शायद आपकी रोज की पेरेंटिंग तकनीकों से ज्यादा गहरा होता है।
ये तो बहुत सारे पेरेंट्स के लिए काफी राहत की बात हो सकती है, इतना प्रेशर कम हो जाएगा।
हाँ शायद। और इसी से जुड़ा है अगला, यानी छठा अध्याय। उसका सवाल है नाम के बारे में, परफेक्ट पेरेंटिंग पार्ट टू, या क्या नाम में कुछ रखा है।
हाँ, ये भी बड़ी बहस चलती है, क्या बच्चे का नाम उसकी किस्मत पर असर डालता है, जैसे अमेरिका में बहस होती है ब्लैक नामों और व्हाइट नामों को लेकर।
बिल्कुल, तो लेखकों ने कैलिफोर्निया के लाखों बर्थ सर्टिफिकेट्स का डेटा एनालाइज किया, बहुत बड़ा डेटा सेट था।
और नतीजा, क्या नाम से फर्क पड़ता है?
उनका निष्कर्ष ये था कि नाम किसी की सफलता या असफलता का कारण नहीं बनता, बल्कि नाम अक्सर माता पिता की पृष्ठभूमि, उनकी शिक्षा, उनकी सामाजिक आर्थिक स्थिति का एक संकेतक या नतीजा होता है।
अच्छा, मतलब
अगर किसी बच्चे का नाम ऐसा है जिसे समाज में, मान लीजिए, पिछड़ेपन से जोड़कर देखा जाता है, तो वो बच्चा उस नाम की वजह से पीछे नहीं रह रहा, बल्कि वो नाम शायद इस बात का इशारा है कि वो ऐसे परिवार या माहौल से आ रहा है जहां आगे बढ़ने के रास्ते में वैसे ही ज्यादा चुनौतियां हैं। तो असली मुद्दा माहौल है, नाम नहीं। नाम तो बस एक लक्षण है, बीमारी की जड़ नहीं।
समझ गई, नाम माता पिता की पहचान और उनकी उम्मीदों को दिखाता है, पर वो बच्चे की कहानी खुद नहीं लिखता।
एग्जैक्टली।
वाह, ये किताब तो सच में एक के बाद एक आम धारणाओं को तोड़ती जा रही है। अगर हम इन सब बातों से कुछ मुख्य संदेश निकालने की कोशिश करें तो क्या होंगे?
मेरे ख्याल से पहला और सबसे जरूरी सबक तो यही है, इंसेंटिव्स यानी प्रोत्साहन ही असली किंग है। मॉडर्न लाइफ इन्हीं से चलती है। अगर आप समझना चाहते हैं कि लोग या कंपनियां या सरकारें कोई काम क्यों कर रही हैं, तो ढूंढिए कि उनका इंसेंटिव क्या है, फायदा क्या है, नुकसान क्या है।
हाँ, ये आर्थिक भी हो सकता है, सामाजिक भी, है ना? जैसे समाज में इज्जत मिलना या बदनामी का डर।
बिल्कुल, हर तरह के इंसेंटिव काम करते हैं। भारत में ही देख लीजिए, चाहे वो ट्रैफिक नियम तोड़ना हो या ऑफिस की पॉलिटिक्स हो या चुनाव हो, हर जगह इंसेंटिव्स का खेल चल रहा है। इसे समझना बहुत जरूरी है।
ठीक है, दूसरा सबक क्या होगा?
दूसरा बड़ा सबक, सब जानते हैं या ये तो कॉमन सेंस है वाली बातें अक्सर गलत होती हैं। पारंपरिक ज्ञान पर आंख मूंदकर भरोसा मत कीजिए, उस पर सवाल उठाइए, डेटा देखिए, सबूत मांगिए।
हाँ, हम कितनी आसानी से मान लेते हैं चीजों को बिना सोचे।
बिल्कुल, ये बौद्धिक आलस है एक तरह का। फ्री इकोनॉमिक्स हमें जगाती है कि थोड़ा क्रिटिकली सोचो।
तीसरा,
डेटा में बहुत ताकत है, वो छिपे हुए सच को सामने ला सकता है। सही सवाल पूछें और सही डेटा देखें तो हम विचारधारा और सुनी सुनाई बातों से ऊपर उठकर चीजों को ज्यादा ऑब्जेक्टिवली देख सकते हैं।
लेकिन यहाँ सावधानी भी जरूरी है, और ये है चौथा पॉइंट, कोरिलेशन का मतलब कॉजेशन नहीं होता। सिर्फ इसलिए कि दो चीजें एक साथ हो रही हैं, ये मान लेना कि एक की वजह से दूसरी हो रही है, ये बहुत बड़ी गलती हो सकती है।
हाँ, वो आइसक्रीम और क्राइम वाला उदाहरण याद रहेगा।
बिल्कुल,
हमें हमेशा पूछना चाहिए, क्या कोई तीसरा फैक्टर है जो दोनों को प्रभावित कर रहा है।
ठीक है, और पांचवा सबक?
पांचवा है इन्फॉर्मेशन असिमेट्री का खेल, जानकारी जिसके पास ज्यादा, ताकत उसके पास ज्यादा। ये समझना जरूरी है कि कब हमारे पास कम जानकारी है और सामने वाला उसका फायदा उठा सकता है, चाहे वो सब्जी खरीदना हो या शेयर बाजार में पैसा लगाना।
हाँ, आजकल इंटरनेट ने जानकारी आसानी से उपलब्ध कराई है, पर फिर भी ये खेल तो चलता ही रहता है।
चलता रहता है। और छठा जो मुझे पर्सनली बहुत फैसिनेटिंग लगा, बड़े प्रभावों के कारण अक्सर छोटे, अनदेखे या बहुत दूर के हो सकते हैं, जैसे वो गर्भपात और अपराध वाला लिंक।
हाँ, किसने सोचा होगा।
ये हमें सिखाता है कि जब हम समाज की बड़ी समस्याओं को देखते हैं तो उनके हल शायद वहीं ना मिले जहां हम ढूंढ रहे हैं। हमें थोड़ा और गहरा खोदना होगा, थोड़ा पीछे जाना होगा और थोड़ा धैर्य रखना होगा।
ये तो बहुत गहरी बातें हैं। किताब में कुछ ऐसी पंक्तियां भी हैं जो दिमाग में अटक जाती हैं।
हाँ, कई है। एक मुझे बहुत सटीक लगती है, नैतिकता, आप कह सकते हैं वो तरीका है जैसा लोग दुनिया को चलते हुए देखना चाहेंगे, जबकि अर्थशास्त्र दिखाता है कि ये असल में चलती कैसे है।
मतलब ये किताब जजमेंट नहीं दे रही, बस विश्लेषण कर रही है कि चीजें होती क्यों हैं।
बिल्कुल, वो क्या होना चाहिए से ज्यादा क्या हो रहा है और क्यों हो रहा है पे फोकस करती है, आंकड़ों और इंसेंटिव्स के आधार पर।
और कोई?
एक और है इंसेंटिव्स की ताकत पर। एक प्रोत्साहन एक गोली, एक लीवर, एक चाबी जैसा है। अक्सर एक छोटी सी चीज जिसमें हालात बदलने की जबरदस्त ताकत होती है। ये बताता है कि कभी कभी छोटे छोटे बदलाव, अगर वो सही इंसेंटिव पर चोट करें तो कितने बड़े नतीजे ला सकते हैं।
ये तो पॉलिसी बनाने वालों के लिए बहुत जरूरी सबक है।
हाँ, और पेरेंटिंग वाली बात का सार एक लाइन में, आप माता पिता के तौर पर क्या हैं, मतलब आपकी शिक्षा, सफलता, स्वास्थ्य, ये ज्यादा मायने रखता है बजाय इसके कि आप क्या करते हैं, यानी वो रोज की छोटी छोटी तकनीकें।
ये बार बार सुन के अच्छा लग रहा है, थोड़ी चिंता कम होती है।
तो अब सवाल यह है कि इन सब आइडियाज का हम अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में क्या करें, कैसे इस्तेमाल करें?
हाँ, ये जरूरी सवाल है, क्या लगता है?
सबसे पहले तो मुझे लगता है हम बेहतर फैसले ले सकते हैं। कोई भी सिचुएशन हो, चाहे पर्सनल हो या प्रोफेशनल, रुक कर सोचें, यहाँ असली इंसेंटिव क्या है, मेरे लिए क्या है, दूसरों के लिए क्या है, क्या कोई जानकारी है जो मेरे पास नहीं है, क्या मेरी अपनी धारणाएं मुझे गुमराह कर रही हैं?
मतलब थोड़ा ज्यादा सोच समझकर एक फ्रीकोनॉमिक्स लेंस लगाकर चीजों को देखना।
हाँ, कार खरीदनी हो, नौकरी बदलनी हो, किसी से बहस करनी हो, ये सोच मदद कर सकती है।
और दूसरा,
हम जानकारी के ज्यादा क्रिटिकल उपभोक्ता बन सकते हैं। आजकल इतनी खबरें, इतने ओपिनियन, इतने दावे आते हैं हमारे पास, खासकर सोशल मीडिया पर।
हाँ, सच और झूठ में फर्क करना मुश्किल हो जाता है।
तो फ्रीकोनॉमिक्स हमें सिखाती है कि शक करो, सवाल पूछो, क्या यह सिर्फ कोरिलेशन है, क्या डेटा पूरा दिखाया जा रहा है, कहीं कोई अपना एजेंडा तो नहीं चला रहा। ये हमें फेक न्यूज और मैनिपुलेशन से बचने में मदद कर सकता है।
ये तो आज के जमाने में बहुत जरूरी स्किल है। तीसरा,
हम अपने आसपास के सिस्टम्स को बेहतर समझ सकते हैं और शायद उन्हें बेहतर बनाने में मदद भी कर सकते हैं, चाहे वो हमारे ऑफिस का कल्चर हो, सोसाइटी के नियम हो या सरकार की कोई पॉलिसी। अगर हम समझें कि कोई सिस्टम लोगों को गलत व्यवहार करने के लिए कैसे प्रोत्साहित कर रहा है,
तो हम उसे बदलने की बात कर सकते हैं या ऐसे सिस्टम डिजाइन करने की सोच सकते हैं जहां लोगों का अपना फायदा और सबका फायदा एक साथ हो।
बिल्कुल, ये हमें सिर्फ शिकायत करने से आगे बढ़कर समाधान सोचने के लिए प्रेरित करता है।
और चौथा,
पेरेंटिंग और पर्सनल ग्रोथ पर एक नया नजरिया। जैसा हमने बात की, शायद अपने बच्चों के लिए सबसे अच्छी चीजों में से एक जो हम कर सकते हैं वो है खुद पर काम करना, अपनी लर्निंग, अपनी हेल्थ, अपनी मेंटल वेलबींग पर ध्यान देना।
क्योंकि हम जैसे होंगे उसका असर शायद हमारे बच्चों पर सबसे ज्यादा पड़ेगा।
हाँ, शायद। तो ये कुछ तरीके हैं जिनसे ये सोच हमारी जिंदगी में काम आ सकती है।
मेरे लिए तो इस पूरी चर्चा से सबसे बड़ी सीख ये है कि दुनिया वाकई में जितनी दिखती है उससे कई ज्यादा कॉम्प्लेक्स और इंटरकनेक्टेड है। चीजें आपस में ऐसे जुड़ी हैं जैसे हम कभी सोचते भी नहीं। और ये जो अर्थशास्त्र के टूल्स हैं, इंसेंटिव्स, डेटा, सवाल पूछना, ये इस कॉम्प्लेक्सिटी को समझने में वाकई टॉर्च की तरह काम कर सकते हैं। और हाँ, पारंपरिक ज्ञान पर हमेशा सवाल उठाना चाहिए।
और मेरे लिए ये किताब एक तरह से जिज्ञासा का, क्यूरियोसिटी का और डेटा की ताकत का जश्न है। ये दिखाती है कि अगर हम सही सवाल पूछने की हिम्मत करें और बिना किसी पूर्वाग्रह के, बिना डरे आंकड़ों को देखें, तो हम रोजमर्रा की साधारण सी दिखने वाली चीजों में भी कितने असाधारण इनसाइट्स पा सकते हैं। ये सिर्फ फैक्ट्स नहीं बताती, ये सोचने का एक नया तरीका सिखाती है, एक फ्रीकोनॉमिक्स तरीका।
हाँ, शायद हमें हर उस चीज पर सवाल उठाना चाहिए जो हमें बिल्कुल नॉर्मल लगती है।
बिल्कुल, अगली बार जब कोई चीज अजीब लगे या समझना है या बस ऐसी ही होती है वाली लगे, तो रुकिए और पूछिए, यहाँ असली इंसेंटिव क्या चल रहा है, छिपा हुआ पहलू क्या है, शायद जवाब आपको हैरान कर दे।
बिल्कुल,
मिलेंगे अगले अंक में एक और विश्व प्रसिद्ध व्यक्तित्व, एक और किताब और एक ऐसे नए विचार के साथ जो हमारी दुनिया को आकार देता है। ये ऑडियो सारांश आपके लिए एक्त्र फाउंडेशन द्वारा प्रस्तुत है।